بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتین دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ फिर यदि तुम इन सब स्पष्ट निशानियों और चमत्कारों के आने के बाद भी फिसलकर पद भ्रष्ट हो गए तो जान लो कि ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ये पद भ्रष्ट इतने सारे स्पष्ट तर्कों के बावजूद इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर और फरिश्ते बादलों की छाया में प्रकट होकर इनके सामने आएं और इनके समक्ष नए तर्क रखें ताकि ये ईमान लाएं, जबकि लोगों के मार्गदर्शन के बारे में ईश्वरीय आदेश पूरा हो चुका है और सभी मामले ईश्वर ही की ओर लौटाए जाएंगे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज सोमवार है, फरवरी की 27, शाबान की 6 और इस्फंद माह की 8 तारीख। कार्यक्रमों में सदैव की भांति आप पहले विश्व समाचार सुनेंगे, फिर हम आपको राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनवाएंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के बाद आप साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे विश्व दर्पण, और हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सेहत का राज। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा है कि इराकी कुर्दिस्तान में आतंकियों को पनपने नहीं देंगे। यूक्रेन की कई राजधानियों में यूक्रेन युद्ध के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन के कारण रूस और चीन निकट हो रहे हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री को गंभीर खतरा बताया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति ने कहा है कि इराक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल न हो। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी है कि ईरान इराकी कुर्दिस्तान को अपने खिलाफ आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए उसने कई बार कुर्दिस्तान के इलाके में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति रईसी ने तेहरान में इराकी रक्षा मंत्री से मुलाकात में कहा कि ईरान इराक की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा समझता है और दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि का समर्थक है।
आईआरजीसी के कमांडर का कहना है कि हम इराक की सशस्त्र सेना के प्रशिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इराक के रक्षा मंत्री ने सोमवार को तेहरान में इस्लामिक क्रांति संरक्षक बल सिपाही पासदारान के मुख्यालय में कमांडर जनरल सुलेमानी से मुलाकात की। क्षमा कीजिएगा, पासदारान के मुख्यालय में कमांडर जनरल हुसैन सलामी से मुलाकात की। जनरल हुसैन सलामी ने इराक के रक्षा मंत्री साबित मोहम्मद सईद रजा से कहा कि इस्लामी जगत में इराक को विशेष महत्व हासिल है। उन्होंने हालिया परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इराक के लिए मजबूत संप्रभुता के इच्छुक हैं, हालांकि अमरीकी और जानी क्षेत्र पर नियंत्रण करके इराक तथा ईरान के बीच अशांति पैदा करने के प्रयास में हैं।
आईआरआईबी के प्रमुख ने कहा है कि विदेशी सेवा हमेशा ही आतंकवाद के मुकाबले में आगे रही है। ईरान के रेडियो और टेलीविजन केंद्र के प्रमुख ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबले में IRIB की एक्सटर्नल सर्विस सबसे आगे रही है। पैमान जिबिल्ली ने मीडिया के शहीदों के बारे में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि IRIB की विदेशी सेवा के पत्रकार हमेशा ही आगे आगे रहे हैं। उनका कहना था कि इस मार्ग में हमने 10 से अधिक शहीद दिए हैं। याद रहे कि सोमवार को राजधानी तेहरान में ईरानी और विदेशी पत्रकारों की उपस्थिति में ईरान के मीडिया के शहीदों के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको ईरान के रेडियो और टेलीविजन केंद्र के प्रमुख पैमान जिबिल्ली ने संबोधित किया।
कई यूरोपीय देशों के राजधानियों में यूक्रेन युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किए गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर यूक्रेन युद्ध का विरोध किया। ये लोग फ्रांस सरकार द्वारा यूक्रेन को हथियार देने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि हथियार देने से युद्ध बढ़ता है, रुकता नहीं है। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में जो प्लेकार्ड लिए हुए थे उन पर लिखा था फॉर पीस या नो टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। फ्रांसीसी प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना था कि पेरिस को नेटो संधि से तत्काल निकल आना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि युद्ध नेटो की वजह से शुरू हुआ है। वे ये भी कह रहे थे कि फ्रांस आंखें मूंद कर अमरीका का समर्थन कर रहा है।
अमरीका के पूर्व वित्त मंत्री कहते हैं कि रूस पर लगे पश्चिम के प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहे। लॉरेंस समर्स ने रविवार को बताया कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहे हैं, इसलिए उसके विरुद्ध सीमितताएं बढ़ाई जाएं। उन्होंने कहा कि रूस के तेल के मूल्यों को अधिक सख्त किया जाए ताकि मास्को पर प्रतिबंधों का अधिक से अधिक प्रभाव दिखाई दे। अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि रूस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध अधिक कठोर नहीं थे, क्योंकि चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों ने इसमें भाग नहीं लिया, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल रूस के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार उल्लेखनीय ढंग से जारी है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि बाइडेन प्रशासन के क्रियाकलापों ने चीन और रूस को निकट कर दिया। ईरान प्रेस के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति की सरकार के क्रियाकलाप ही चीन और रूस के निकट होने का कारण बने हैं। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि जो बाइडेन ने रूस और चीन को ऐसे में निकट होने के लिए मजबूर किया है कि जब उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने इस साक्षात्कार में कहा कि जब मैं विद्यार्थी था और इतिहास पढ़ता था तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि चीन और रूस को कभी भी निकट न होने दिया जाए। हालांकि इस समय अमरीकी सरकार उनको एकजुट करने के लिए बाध्य कर रही है। ट्रंप के अनुसार ये काम अमरीका के लिए बहुत ही खतरनाक है।
इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की कैबिनेट पर हमला करते हुए कहा है कि नेतन्याहू का शासन ज़ायोनी शासन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा है। लैपिद का कहना था कि नेतन्याहू के वित्त मंत्री के समर्थक ज़ायोनी चरमपंथियों ने नाबलुस के दक्षिण में स्थित हवारा शहर को आग लगा दी ताकि उकबा बैठक को निष्क्रिय किया जा सके। ज़ायोनी वित्त मंत्री ने इससे पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो और उनके समर्थक उकबा बैठक में बनने वाली सहमति के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे और अवैध बस्तियों का निर्माण जारी रहेगा। गौरतलब है कि नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणपंथी ज़ायोनी पार्टियों के साथ मिलकर एक सरकार बनाई है जो फिलिस्तीनियों के मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिए प्रयास कर रही है।
अमरीकी गुप्तचर सेवा CIA के प्रमुख ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर हमला करने के चक्कर में है। CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस देश की सेना को आदेश दिया है कि ताइवान पर हमला करने के लिए वो तैयार रहे। उनका कहना है कि हमला 2027 तक हो सकता है। CIA प्रमुख के अनुसार ताइवान को नियंत्रित करने के बारे में चीन की नीति को अमरीका को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका कहना है कि जहां तक मुझको पता है उसके हिसाब से चीन के राष्ट्रपति का आदेश है कि ताइवान पर हमले के लिए पूरी तरह से सेना को तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक आगे आएंगे।
इटली के तट पर नाव के हादसे में 60 प्रवासियों की मौत हो गई। दक्षिणी इटली के तट पर एक नाव के डूबने से करीब 60 प्रवासियों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। इटली के अधिकारियों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर तुर्की से चली ये नाव बीच समुद्र में 2 टुकड़े हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ये नाव क्रोटोन शहर के तट पर पड़ाव डालने वाली थी। इटली के राष्ट्रपति के अनुसार नाव पर सवार ये लोग अपने देशों में खराब हालात से बचकर इटली पहुंचना चाहते थे। हादसे का शिकार होने वाली नाव में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया और ईरान के नागरिक शामिल थे।
रविवार को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपों में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। रविवार को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और शाम 7 बजे खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही बताया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने यह गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बेकसूर बताया है। उन्होंने दावा किया कि इसे लोगों में रोष व्याप्त है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने बयान जारी कर दिया है कि दिल्ली की शराब नीति के अनुपालन में हुई गड़बड़ी की जाँच के दौरान सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान, रूस ने किया अमेरिका को सचेत और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार। तो सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस दरमियान तेहरान पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वो यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि तेहरान ने बारंबार इस बात का खंडन किया है और उसने कहा है कि वो हमेशा से निष्पक्ष रहा है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यूक्रेन और रूस दोनों राष्ट्रों का सम्मान करते हुए और दोनों देशों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर युद्ध जारी रहने पर गहरा खेद व्यक्त किया है और तेहरान की निष्पक्ष नीति पर जोर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान एक ऐसे देश के रूप में जो अमेरिका और पश्चिम द्वारा समर्थित युद्ध, खतरों और एकतरफा प्रतिबंधों का शिकार रहा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता पर बल देता है। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। एक साल बीत जाने के बाद भी ये युद्ध जारी है जिसमें दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान पहुंचा है। युद्ध की शुरुआत में ये अनुमान लगाया गया था कि यूक्रेन में युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन इसकी निरंतरता और वृद्धि ने कुछ समीकरणों को बदल दिया है। अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्य वर्तमान स्थिति में यूक्रेन को सबसे अधिक सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं, हालांकि ये देश सीधे युद्ध में प्रवेश करने से इनकार करते रहे हैं। वहीं यूक्रेन यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य बनने की उम्मीद में था, लेकिन अब उसे नाटो और यूरोपीय संघ दोनों में सदस्यता के लिए पश्चिम के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन को पश्चिम ने रूस को नियंत्रण करने के लिए बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल किया है। ईरान ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन संकट के संबंध में सक्रिय तटस्थता की नीति का पालन करता रहेगा। वास्तव में ईरान इस संकट का समर्थक नहीं है और इस संकट की शुरुआत के बाद से उसने मतभेदों को हल करने और युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों को कूटनीति के रास्ते पर वापस लाने की कोशिश की। तेहरान के दोनों ही पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। ईरान इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसने एक संतुलित और तर्कसंगत स्थिति अपनाते हुए रूस और यूक्रेन के बीच मतभेदों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया और साथ ही नाटो की उत्तेजक कार्रवाइयों और इससे जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी। इस संबंध में ईरान ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तत्परता की घोषणा की है ताकि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। जनवरी 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक टेलीफोन पर बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने क्षेत्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और एक बार फिर युद्ध को समाप्त करने के लिए सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए ईरान की तत्परता जताई।
और अब रुख करते हैं भारत का। नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कई प्रदेशों में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं, जबकि कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था कि वे बेकसूर हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी नई दिल्ली में पुलिस ने बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने दफ्तर और सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद हाई अलर्ट जारी किया था और दिल्ली के कई महत्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया गया था। राजधानी के कई स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे बताया गया है कि सीबीआई के अधिकतर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक दबाव इतना था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की माननी पड़ी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल फर्जी खबरें न फैलाएं, कानून अपना काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। शराब नीति में कथित घोटाले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मामला दर्ज किया था। 6 महीने की जांच और कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद सिसोदिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने आबकारी नीति में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों को सौंप दिया गया था। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म होने का तर्क दिया था और दावा किया था कि इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन नतीजा सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत आया और सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और अब रुख करते हैं रूस का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सचेत किया है कि अमेरिका अपनी अगुवाई में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की चेष्टा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि पूरी दुनिया केवल उसके इशारे पर और उसकी इच्छा के अनुसार चले, और अमेरिकी सरकारें इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि वे क्या चाहती हैं, परंतु कुछ समस्याओं व कठिनाइयों में घिरे होने के कारण अभी वे इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दे रही हैं। अमेरिका ने विभिन्न विशेषकर हालिया दो दशकों में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में काम किया है। इराक, अफगानिस्तान और सीरिया संकट को उत्पन्न करने में उसने जो भूमिका निभाई है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसी प्रकार अमेरिका ने यूक्रेन संकट को उत्पन्न करने में जो भूमिका निभाई है और निभा रहा है उससे विश्व जनमत बहुत अच्छी तरह अवगत है। विश्व जनमत इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि यूक्रेन संकट अमेरिका और नाटो के क्रियाकलापों का दुष्परिणाम है। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता का झांसा दिया और यूक्रेन उसके इस झांसे में आ गया, और उसके झांसे में आने का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को अपनी सैनिक छावनी में परिवर्तित कर दिया। यहाँ तक कि रूस की सीमा के पास अमेरिका के जासूसी ड्रोन उड़ने लगे और दूसरी सैन्य गतिविधियां होने लगी, और ये वो चीज है जिसे रूस ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा समझा। यहाँ इस बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि अगर कोई देश किसी भी देश की सीमा पर सैन्य गतिविधियां करने लगे और अपने जासूसी और गैर जासूसी ड्रोन विमानों को उड़ाने लगे तो जिस देश की सीमा पर ये गतिविधियां होगी वो वही समझेगा जो रूस ने समझा। कहने का तात्पर्य यह है कि यूक्रेन युद्ध की आग अमेरिका ने लगाई है और यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप भेजकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। यही नहीं, दूसरे पश्चिमी व यूरोपीय देश भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और वे भी यूक्रेन की सैन्य सहायता कर रहे हैं। कोई देश ड्रोन भेजकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, कोई यूक्रेन के लिए टैंक भेज रहा है तो कोई मिसाइल भेज रहा है। जो देश यूक्रेन की सैन्य सहायता कर रहे हैं इससे वे दो लक्ष्यों को साध रहे हैं। सबसे पहले वे अमेरिका की सेवा कर रहे हैं और वाशिंगटन की खुशी को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य समझ रहे हैं। इसी प्रकार वे यूक्रेन की मदद करके ये संदेश देना चाहते हैं कि वे यूक्रेन के हितैषी व शुभचिंतक हैं, जबकि अगर वास्तव में अमेरिका और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले देश यूक्रेन के शुभचिंतक होते तो वे जल्द से जल्द वार्ता और शांतिपूर्ण मार्गों से यूक्रेन संकट के समाधान की बात करते, न कि आग में घी डालते। परंतु अमेरिका और उसके पिछलग्गू देशों ने यूक्रेन की सैन्य सहायता करके व्यवहारिक रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल यूक्रेन के शुभचिंतक नहीं हैं, बल्कि उसकी बर्बादी की दिशा में काम कर रहे हैं, और यूक्रेन में जो जान माल की भारी तबाही हो रही है वो इन्हीं तथा कथित शुभचिंतक देशों के क्रियाकलापों का परिणाम है।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, अराजकता के बीच भी अवसर है। सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने इस बात को सच साबित कर दिया। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन की जंग को एक साल हो गए हैं। इससे पहले यानी 20 फरवरी को स्टाइलिश चश्मे, डिजाइनर ओवरकोट और चमचमाते जूतों में जो बाइडेन क्यों पहुंच जाते हैं? क्यों उस देश की राजधानी है जो पिछले एक साल से जंग की गवाह बनी हुई है। वहीं जो बाइडेन ने यूक्रेन में ऐसे एंट्री ली के जैसे वो इस जंग के असली हीरो हैं और उन्हें इस युद्ध पर गर्व हो रहा है। तभी तो उन्होंने क्यों पहुंचने के बाद अपने भाषण में कुछ इस तरह कहा।
It was one year ago this week that we spoke on the telephone, Mr. President. It was very late at night in Washington, very early in the morning here in Kyiv. Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that.
बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। मेरा कहना है कि क्यों ने मेरे दिल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन को वे सभी हथियार मिलेंगे जिनकी उसे जरूरत है। कोई समझौता नहीं होगा। बाइडेन के इस दौरे से जहां यूक्रेन युद्ध के और भड़कने की आशंका बढ़ गई है, वहीं ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी किसी भी स्थिति में यूक्रेन युद्ध की समाप्ति नहीं चाहते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो बाइडेन उसी देश के राष्ट्रपति हैं जिसका रिकॉर्ड हमेशा किसी युद्ध को शुरू करने, फिर उसे दशकों तक खींचने और फिर तबाह हुए देशों की कई फाइलों को तैयार करने का रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से कई तरह के अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की है। उसमें एक तो जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों की रूस से बढ़ती नजदीकियों को रोकना था, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से जहां रूस से जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों तक ऊर्जा पहुंचती, वहीं ये योजना इन देशों के बीच संबंधों को मजबूत भी बनाती। अमेरिका के सामने ये एक चैलेंज था कि इस योजना को किसी भी स्थिति में रुकना चाहिए। और यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही सबसे पहले यही हुआ कि जर्मनी ने इस योजना के बंद करने का ऐलान कर दिया। इस बारे में अमेरिका में तैनात रही भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर अपने विचार रखते हुए कहती हैं,
देखिए, अगर आप इतिहास को भी देखते हैं तो यूएस ने कभी रूस को यूरोप में कन्फ्रंट नहीं किया है, चाहे रूस चेकोस्लोवाकिया में घुसा चेक स्प्रिंग को दबाने के लिए, चाहे टैंक्स भेजे कहीं ईस्ट यूरोप में, वॉसो पैक्ट कंट्रीज एक आदि में, तो यूएस ने कभी रूस का सामना यूरोप में नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस थी वो करीब करीब तुलने में थी और बैलेंस में थी, तो बड़ा युद्ध के डर से और न्यूक्लियर युद्ध के डर से दोनों साइड्स ने कभी दूसरे के स्फीयर में इतना ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन यूरोप में नहीं किया। उनका जो इनकी जो लड़ाई होती थी वो तीसरी देशों में, विकासशील देशों में, जैसे कि अफगानिस्तान में या फिर अफ्रीका में या फिर लैटिन अमेरिका में, यहाँ होती थी इनकी लड़ाई, यूरोप में कभी नहीं हुई है। और मैं मानती हूँ कि अभी भी यही पॉलिसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने कुछ नहीं किया है, बहुत कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, 2014 को लेके भी ज्यादा लगाए हैं, तो काफी दबाव डाला है रूस पे आर्थिक तौर से। ये जरूर है कि रूस ने ये भी फैक्टर किया होगा कि ये दबाव डलेगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरा अगर आप देखें, अमेरिका का एक निशाना जरूर इस पे था कि ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो रूस से जर्मनी तक ऊर्जा ले जा रही थी नॉर्थ सी के नीचे से, उस पे रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तैयार थी, ये शुरू होने वाली थी और इससे पश्चिमी यूरोप का, खास तौर से जर्मनी और ऑस्ट्रिया, दो तीन और देश थे जो इस पाइपलाइन से गैस लेने वाले थे, उनकी निर्भरता रूस के ऊपर और बढ़ जाती। तो इससे अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे रोक लगवा दी है, जर्मनी ने खुद किया है, जबकि पहले जर्मनी हिचक रहा था।
विश्व दर्पण। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
दोस्तों, अगर बात की जाए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, तो वो अपने देश को युद्ध की आग से बाहर निकालने के बजाय लगातार हॉटलाइन पर बाइडेन समेत अन्य यूरोपीय देशों के नेताओं से कई अरब डॉलर और यूरो की मदद और हथियारों की मांग करते चले आ रहे हैं। उन्हें ये मदद मिली भी है, लेकिन इन डॉलर और यूरो में मिलने वाले पैसों का क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में स्वयं यूक्रेन के नागरिक भी जानना चाहते हैं। बच्चों का भविष्य, वृद्धों की पेंशन, युवाओं की सैलरी और घर पर पकने वाली रोटी अब खतरे में नजर आ रही है। जबकि ज़ेलेंस्की के भाषणों और उनके रवैये से ऐसा लगता है कि अब उनको युद्ध की समाप्ति को लेकर कोई चिंता नहीं है, इसीलिए अब वो वार्ता या युद्ध विराम को लेकर किसी भी तरह की कोई बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध से उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि अमरीका किसी भी स्थिति में इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता है। यही कारण है कि बाइडेन ने अपनी क्यू यात्रा के दौरान एक बार फिर युद्ध विराम और रूस के साथ समझौते की कोई भी बात नहीं की। इसके पीछे की क्या वजह है, इस बारे में भी अमेरिका में तैनात रही भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर बताती हैं।
देखिए कि एक तो अमेरिका ने ये भी दिखा दिया पश्चिमी यूरोप में, अमेरिका इज बैक, जो कि ट्रंप के जमाने में, वो ट्रंप साहब तो खुद यूरोपीय देशों के, पश्चिमी देशों के साथ, नेटो के देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ व्यापार के तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे, और कई दफे ये भी कहा था कि नेटो तो बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है, यूरोपियन, पश्चिमी यूरोपियन देशों को एकत्रित किया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो रुख है इस समस्या को लेके, वो इस समस्या को हल करने में नहीं है, इस समस्या को थोड़ा आगे बढ़ाने में है, क्योंकि इनको फायदा उसमें दिखता है। ये समस्या बिल्कुल रोकी जा सकती थी, ये जरूरी नहीं थी, क्योंकि जो सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद जो पश्चिमी देशों ने यूरोप में सुरक्षा की जो व्यवस्था करी, वो इस पे निर्भर थी कि रूस हमेशा के लिए कमजोर ही रहेगा और हम जो चाहे करते जाएंगे रूस पे दबाव डालने के लिए। पुतिन ने काफी दिनों से कहा कि आपने हमें ये कहा था कि नेटो पूरब की ओर नहीं और बढ़ेगा, जब बर्लिन वॉल गिरा था, पर अब जो है ये तो बिल्कुल हमारे ही जो पहले के प्रांत थे वहां तक आ रहा है, और यूक्रेन और जॉर्जिया ने मेंबरशिप के लिए भी पहले भी अप्लाई किया था, उनको वेटलिस्ट कर लिया था, पर अब जो है यूक्रेन ने अपनी मेंबरशिप की मांग दोहराई थी, इससे ये पूरी क्राइसिस शुरू हुई।
यूक्रेन युद्ध में एक ध्यान योग बात यह है कि यहाँ पर बाइडेन झगड़े की वजह भी जानते हैं और उसे सुलझाने का तरीका भी, मगर फिर भी न जाने क्यों जंग को या झगड़े को खत्म करने के बजाय बस डॉलर पर डॉलर लुटाए जा रहे हैं और हथियार पर हथियार दिए जा रहे हैं। उन्हें इस बात से बिल्कुल परहेज भी नहीं है। अब चाहे इसके लिए कोई देश बर्बाद हो या लाखों लोगों की जान जाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि क्यू यात्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन यूक्रेन के हालात समझने से ज्यादा अमेरिका के दिए हुए डॉलर्स का ऑडिट करने गए थे। दिलचस्प बात है कि उनका ये दौरा उस सर्वे के बाद हुआ जिसके नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद यहाँ की जनता को रास नहीं आ रही है। अमेरिका की जनता यूक्रेन की मदद और जेलेंस्की के खिलाफ हो रही है, मगर बाइडेन के अधिकारी जंग के असर को परखने में लगे हुए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाइडेन की क्यू यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ कर दिया है कि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ आरंभ किया गया सैन्य अभियान जारी रहेगा।
начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में उनका विशेष सैन्य अभियान जारी रहेगा। उनका ये भी कहना है कि युद्ध के मैदान में रूस को हराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि युद्ध के दोषी और गुनहगार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं और हम इसे रोकने के लिए ताकत लगा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी इसे दोबारा शुरू कर देगा। कुल मिलाकर अमेरिका और नेटो के सदस्य में एक तरह का रूसोफोबिया तो रहा है, ये शीत युद्ध की विरासत है जो आगे बढ़ती जा रही है। वरना 90 के दशक में जब रूस सोवियत संघ से निकला था और पूरी तरह पश्चिम के साथ मिलने को तैयार था और उनकी जैसी ही राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने की बात कर रहा था, लेकिन उस समय भी अमरीका रूस और यूरोप की बढ़ती नजदीकियों में रुकावट बनकर सामने आया था। आज भी अमरीका अपने उसी उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही बाइडेन एक बार फिर उस अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिसे जंग की आग को हथियार देकर भड़काना और फिर उसी आग में हाथ सेकना अच्छा लगता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम था विश्व दर्पण, जिसे पेश किया रविश जैदी ने। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम, सेहत का राज।
सेहत का राज। दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज की अगली कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में हम टमाटर के महत्व और उसके लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, क्या आप टमाटर के बिना खाने की कल्पना कर सकते हैं? दुनिया में बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। विश्व के कई देशों में ये उनके आहार का मूल हिस्सा है। टमाटर को लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ये विश्व में प्रयोग होने वाली सबसे महत्वपूर्ण सब्जी मानी गई है। टमाटर के बारे में मूल भेद ये है कि वनस्पति विज्ञान में तो इसे एक फल माना गया है, जबकि कृषि के क्षेत्र में इसको सब्जी के रूप में परिभाषित किया गया है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम सोलनम लाइकोपोडियम पैसिर कम है। टमाटर को आप चाहे फल माने या फिर सब्जी, विशेष बात यह है कि इसको पोषक तत्वों का पावर हाउस बताया गया है।
हमारे शरीर के लिए टमाटर बहुत ही लाभकारी है। इसके प्रयोग से कई रोगों का निदान किया जा सकता है। वर्तमान समय में टमाटर का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। टमाटर को उसके कच्चे स्वरूप के अतिरिक्त भूनकर, पकाकर और चटनी के रूप में या दूसरे तरीकों से प्रयोग किया जाता है। टमाटर की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चीन, भारत, तुर्की तथा अमेरिका को टमाटर के बड़े उत्पादक देशों के रूप में देखा जाता है। विश्व में टमाटर के अधिक निर्यात में अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, इटली, स्पेन और मोरक्को जैसे देशों के नाम सर्वोपरि है।
ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की जाती है। ईरान से टमाटर का निर्यात कतर, रूस, ओमान, यूएई और इराक को किया जाता है। ईरान में जिन क्षेत्रों में टमाटर की पैदावार सबसे अधिक है उनके नाम इस प्रकार हैं: इस्फहान, आज़रबाईजान, कज़वीन, खुर्रमाबाद, हमादान, बूशहर, वरामीन और जीरुफ्त आदि। टमाटर के पौधे को एक शाकाहारी पौधा माना गया है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अफ्रीका में बताई जाती है। कहते हैं कि बाद में वहीं से टमाटर संसार के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। कहा यह भी जाता है कि आलू, मक्का और तंबाकू से पहले टमाटर को पेरू से यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया था।
एक कथन के अनुसार सन 1850 से टमाटर की ओर अधिक ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके बाद से लोगों के बीच इसका चलन बढ़ने लगा। इसके फूल हरे रंग के होते हैं। जब यह पक जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। टमाटर केवल लाल रंग का ही नहीं होता, बल्कि यह हरे, नारंगी, पीले और बैंगनी रंगों में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह लाल रंग का ही होता है। टमाटर की बहुत सी किस्में हैं। कुछ जानकारों का ये कहना है कि टमाटर की लगभग 7,500 किस्में इस समय दुनिया में पैदा होती है।
टमाटर की पारंपरिक खेती के साथ ही इसको ग्रीन हाउस के माध्यम से भी उगाया जाता है। उपचारिक गुणों की दृष्टि से टमाटर विटामिन से भरपूर होता है। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, क्लोरोजेनिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और फॉलेट सहित पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और तांबे जैसे खनिजों से समृद्ध होता है। टमाटर पाचन में सुधार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और गुर्दे की रक्षा करने में भी सक्षम बताया जाता है। टमाटर के खट्टे होने के कारण इसके भीतर पाया जाने वाला साइट्रिक एवं मैलिक एसिड होता है।
रासायनिक संरचना के हिसाब से टमाटर के पौधे में सोलनिन पाया जाता है। यह सामान्यतः सारे हरे फलों में मौजूद होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फल जितना अधिक पके होते हैं उनके भीतर सोलनिन की मात्रा उतनी ही कम होती है। टमाटर को यदि पकने से पहले या आधा कच्चा रहने की स्थिति में प्रयोग किया जाए तो शरीर के भीतर विषाक्तता फैलने का खतरा बना रहता है। इसके प्रयोग से दस्त भी आ सकते हैं। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपेन डीएनए को क्षति पहुंचाने वाले कारकों को नष्ट कर देता है, जिससे जिगर ठीक रहता है।
इसके अतिरिक्त टमाटर के भीतर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो लिवर या जिगर के लिए अच्छा माना जाता है। मनुष्य के शरीर में लिवर ही एक ऐसा अंग है जो प्राकृतिक रूप में किसी सीमा तक अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है। टमाटर नष्ट हुए भाग के 25% को पुनः ठीक करने में सक्षम बताया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि टमाटर लिवर की रक्षा करता है और उसको डिटॉक्सिफाइड करने में भी मदद करता है। एक नए अध्ययन से ये पता चला है कि टमाटर के उचित सेवन से लिवर कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। उच्च वसा वाले आहार लिवर को प्रभावित करते हैं और लिवर में सूजन पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में टमाटर के जूस या उसके रस का प्रयोग करवाया जाता है।
टमाटर के भीतर 3 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हल्के रंग के फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह है जीटा कैरोटीन, फाइटोप्लान और फाइटोएनएस। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट सूजन, कैंसर या अर्थराइटिस से मुकाबला करने में मदद करते हैं। सूजन के उपचार के लिए टमाटर के रस के प्रयोग की भी अनुशंसा की जाती है। अध्ययनों से यह बात पता चली है कि टमाटर, विशेष रूप से इसके पाउडर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूजन के उपचार में लाइकोपिन से अधिक प्रभावी होते हैं।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल टमाटर को सूजन से मुकाबला करने का सबसे अच्छा पदार्थ बताता है। उसका ये कहना है कि व्यक्ति को अपने आहार में टमाटर का प्रयोग करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर टमाटर सूजन जैसी समस्या के समाधान में अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में कराए गए अध्ययन ये बताते हैं कि टमाटर के खाने से पित्त की पथरी के साथ ही साथ गुर्दे की पथरी का खतरा भी कम हो जाता है। हालांकि पारंपरिक उपचार शैली में टमाटर को पथरी का कारण बताया गया है। प्राचीन उपचारिक शैली के अनुसार टमाटर खाने से पथरी बनने का खतरा बना रहता है।
टमाटर बीटा कैरोटीन से समृद्ध होता है। इसके भीतर पाए जाने वाले विटामिन्स हड्डियों के रखरखाव और उनके विकास के लिए जरूरी होते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से हड्डियों को नुकसान हो सकता है। टमाटर में पाया जाने वाला ल्यूटिन भी कोलेजन प्रोटीन के निर्माण को बढ़ावा देता है। इससे हड्डियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। टमाटर विटामिन के से भी समृद्ध होता है। नए अध्ययन यह बताते हैं कि जो लोग ताजा टमाटर खाते हैं या फिर उसके रस का प्रयोग करते हैं, वे बड़ी आसानी से अपने खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक लेख में ये बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टमाटर एक आवश्यक पदार्थ है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन लाइकोपिन लेने से उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले रोगियों में स्टैटिन के समान प्रभाव हो सकते हैं। टमाटर बीटा कैरोटीन, फोलेट और फ्लेवोनोइड का भी समृद्ध स्रोत है। ये दिल की सेहत के लिए अच्छी चीज बताया गया है। टमाटर के पोषक तत्व होमोसिस्टीन और प्लेटलेट्स के संचय को कम करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। टमाटर को त्वचा के लिए भी उपयोगी बताया जाता है।
टमाटर की एक विशेषता यह भी है कि उसके भीतर कई प्रकार के विटामिन्स होने के साथ ही साथ बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की विशेषता यह है कि वह मनुष्य की त्वचा से फ्री रेडिकल्स को हटाने, त्वचा को मजबूती देने, झुर्रियों को दूर करने तथा त्वचा को चमकदार बनाने में बहुत ही प्रभावी है। यदि आपकी त्वचा पर काले धब्बे हैं तो आप टमाटर को उन पर मास्क के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इनको त्वचा पर रगड़ने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।
टमाटर के भीतर हिस्टामाइन नामक एक पदार्थ होता है। ये शरीर के कीटाणुओं से लड़कर बदन की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बना देता है। हालांकि टमाटर के बारे में ये कहते हैं कि अगर किसी को एलर्जी हो तो उसको इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति IBS अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित है तो टमाटर का प्रयोग इसके लक्षणों को बढ़ा सकता है। ऐसे में मतली, मांसपेशियों में दर्द, सूजन, गैस का बनना या कब्ज की शिकायत हो सकती है। अगर किसी भी इंसान में इन लक्षणों में से कोई एक या एक से अधिक लक्षण पाए जाते हों तो उसको टमाटर जैसे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए।
टमाटर के भीतर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनसे तेल भी निकाला जाता है। आधुनिक उपकरणों के माध्यम से टमाटर के बीजों को निकाला जाता है, बाद में इन बीजों का तेल निकालते हैं। इसके तेल का स्वाद और उसकी खुशबू टमाटर की ही तरह होती है। टमाटर के तेल का प्रयोग साबुन बनाने, पेंटिंग के तेल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। टमाटर के तेल को अच्छे खाद्य तेलों में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। खुदा हाफिज़।